नमस्कार, स्पोर्ट्स एसएन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के संक में, और इन खबरों पर आज चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। राकेश, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
नजर अब तक की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता में अपनी चुनौती पेश करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से हो रहा है। न्यूजीलैंड के बैटर कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजों की चयन प्रक्रिया कल से भोपाल में शुरू हो रही है। राकेश, आज का दिन बहुत खास है, खासकर अगर बात करें ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं के लिए। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में आज एक बार फिर अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। मौजूदा चैंपियन भी हैं और इनके साथ एक और भारतीय खिलाड़ी हैं किशोर जैना, वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। चर्चा शुरुआत यहां से करते हैं कि सबसे पहले आप डायमंड लीग के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि क्यों ये इतना खास है, क्यों इतना पॉपुलर है।
देखिये, ये एक ऐसी इवेंट है जिसके अंदर दुनिया के जो टॉप एथलीट है वो इसमें शिरकत करते हैं
जी,
और खासतौर पर आप देखिए कि जब से नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना प्रदर्शन बेहतर करना शुरू किया और ओलंपिक का गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड, एशियन गेम्स का गोल्ड, तो एक एक घर घर में जाना पहचानी इवेंट बन गई है। जानते इसको पहले तब सब थे, लेकिन ओलंपिक में गोल्ड के बाद तमाम जो टॉय शॉप्स होती हैं, खिलौनों की दुकानों में जेवलिन के भी खिलौने बिकने लगे
जी,
और उसको खरीदार मिलने लगे, बच्चे उसको खरीदने लग गए प्लास्टिक के जो होते हैं, तो वो एक बड़ी चीज थी। और जिस तरह से सरकार ने लगभग 5 करोड़ रुपया हमारे जेवलिन थ्रोअर्स जो टॉप के हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में चल रहे हैं, जिसमें कि नीरज चोपड़ा है, किशोर जैना है और डीपी मनु, ये तीन हमारे ऐसे टॉप के खिलाड़ी हैं जो कि एक आधे इंटरनेशनल इवेंट तो ऐसी भी होती है कि जिसमें 6 में से जो फाइनलिस्ट है उसमें 3 हिंदुस्तान के खिलाड़ी
जी,
तो इसकी कल्पना करना कि एशियन गेम्स में गोल्ड भी हमारा और सिल्वर भी हमारा, किशोर जैना ने वहां पर जीता, तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हमारे इनका चल रहा है। और नीरज चोपड़ा ने तो दिखा दिया वो क्या है, लेकिन किशोर जैना भी कम उनसे नजर नहीं आ रहे हैं। और जहां तक आपने डायमंड लीग की बात की तो सबकी निगाहें जो इस पे लगी हैं कि भाई क्या होगा। देखिए, हर सीजन की शुरुआत है ये
नहीं,
तो बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ सारे इसमें खिलाड़ी उतरेंगे, और नीरज चोपड़ा के लिए बड़ी चुनौती होगी क्योंकि यहां पर जो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं याकूब वाल्डे चेक रिपब्लिक के, वो यहां पर होंगे। एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के हैं वो होंगे, जिनका की पर्सनल बेस्ट 93.07 मीटर रह चुका है
जी।
आप देखिए कि नीरज चोपड़ा का टारगेट है कि 90 तक पहुंचे, लेकिन यहां पर तो एंडरसन जो पीटरसन है ग्रेनाडा के, वो तो 93.07 फेंक चुके हैं, वो उनका पर्सनल बेस्ट है।
राकेश, यहां पे एक सवाल सा बनता है कि डायमंड लीग प्रतियोगिता हो रही है, उसके कुछ देर बाद पेरिस ओलंपिक भी है, तो यहां पे एक अपनी चुनौती को पुख्ता किया जा सकता है कि हाँ भाई मैं ही चैंपियन हूं और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेरा ही होगा।
देखिए, ओलंपिक्स के लिए तो क्वालिफाई कर चुके हैं क्योंकि वहां तो 85.58 मीटर का वो जो क्वालिफाइंग मार्क है वो तो पार हो चुका है
जी।
लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि इस इवेंट के अंदर डायमंड लीग में जो प्रदर्शन करेंगे उससे पता लगेगा कि किस तरह की फॉर्म में आप चल रहे हैं। हालांकि ओलंपिक के कंपटीशन के दिन, देखिए नया दिन होता है कंपटीशन का किसी भी चैंपियनशिप का, और ओलंपिक का जो प्रेशर है वो डायमंड लीग में कभी आपके ऊपर आ नहीं सकता, तो डायमंड लीग का लेकिन प्रदर्शन से थोड़ी सी लय आपकी पता चलेगी कि जो ऑफ सीजन में आपने तैयारी की है वो कैसी यहां पर चल रही है। तो तमाम ऐसे जो खिलाड़ी हैं, ओलिवर हेलिंडर हैं फिनलैंड के, वो बड़े जबरदस्त हैं, किशोर जैना जो कि बहुत जबरदस्त चल रहे हैं और उन्होंने ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर लिया है, और एशियन गेम्स के वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उन्होंने 87.54 मीटर फेंका था वहां पर
जी,
तो वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और हमें साथ साथ एक एथलीट हमारा और जो जेवलिन थ्रोअर है डीपी मनु को भी नहीं भूलना चाहिए, हालांकि अभी वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो 84.35 मीटर ही रहा है, तो ओलंपिक का जो क्वालिफाई मार्क है 85.50 मीटर का उससे वो अभी पीछे हैं, लेकिन पूरी लगे हुए हैं कि आने वाले समय में वो इनकी बराबरी पे नजर आ सकते हैं।
कुल मिला के अगर हमें समअप करें तो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर जेवलिन थ्रो तो अपनी एक अलग जगह रख ही रहा है, हालांकि ट्रैक एंड फील्ड में इस स्वर्ण पदक ने जो है जान ज्यादा फूंकी है भारतीय खिलाड़ियों के अंदर।
अंदर।
देखिए अब एथलेटिक्स ही कोई भी इवेंट हो तो सबकी निगाहें जो ना जेवलिन थ्रो पे आ गई हैं, और न केवल ये डायमंड लीग बल्कि देखिए हिंदुस्तान के प्रेमी मैं बताऊं कि बड़ी संख्या में खेल पत्रकार भी और तमाम जो नीरज चोपड़ा के चाहने वाले वो भुवनेश्वर का टिकट कटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां 12 से 15 मई तक फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप होनी है और उसमें नीरज चोपड़ा शिरकत करेंगे। और यह पहली बार होगा 2021 के बाद जब वो भारत की धरती पर किसी चैंपियनशिप में परफॉर्म करेंगे, तो लोग तो उनको देखने के लिए, अभी मैं एक जगह बैठा था एक इवेंट के अंदर, तो वहां तमाम खेल पत्रकार वहां की टिकटें भी बुक करा रहे हैं कि भाई नीरज चोपड़ा को देखने जाना है, उनकी इवेंट को कवर करने के लिए जाना है।
जी हम अपने सुनने वालों को बता दें इस डायमंड लीग प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, फिनलैंड, मालदीव, लिथुएनिया, ग्रेनाडा, अमरीका, चेक रिपब्लिक और केन्या के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। और अब रुक करते हैं आईपीएल क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट में इस समय गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बोर्ड पर इस समय 148 रन गुजरात टाइटंस ने लगा दिए हैं। 13वां ओवर ये चल रहा है और कोई विकेट जो है आउट नहीं हुआ है। राकेश, ये जो मैच है मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट सीएसके के लिए है कि उसे टॉप फोर में किस पोजीशन पे रहना है।
बिल्कुल, देखिए अभी भी वो चौथे नंबर पे है सीएसके 12 पॉइंट के साथ, लेकिन जो दो और टीमें हैं दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ की वो भी 12-12 पॉइंट के साथ है, लेकिन इनका क्योंकि नेट रन औसत अच्छा है तो ये अभी चौथे स्थान पर है, लेकिन वो चाहेंगे कि इस मैच को जीतकर वो थोड़ा सा प्लेऑफ की तरफ अपने कदम मजबूती के साथ बढ़ा दें। तो जीत तो देखिए चाहिए, और गुजरात टाइटंस भी देखिए अभी 10वें नंबर पर है
जी,
बिल्कुल आखिरी नंबर पर, और 8 पॉइंट उनके हैं, तो जीतना तो वो भी चाहेंगे, क्योंकि आईपीएल में क्या होता है देखिए दो तीन मैच की जो लय जीत की मिल जाती है तो टीमें दो तीन लगातार जीत जाती हैं, और कुछ कुछ ऐसा दुर्भाग्यशाली टीमें होती है जैसे पंजाब की टीम है कि आखिरी गेंद में पता नहीं उन्होंने 4-5 मैच शायद अपने हार लिए हैं
जी।
तो आईपीएल के अंदर एक जो लय होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी बल्लेबाज की, गेंदबाज की, चाहे वो किसी टीम की। तो जब एक मैच जीतते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि इसको लंबा खींचा जाए
जी,
लय को कि भाई दो तीन मैच तो कम से कम जीत लें हम जब फॉर्म में चल रहे हैं।
राकेश, सीएसके की जो टीम है, चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है, उसे हमेशा ओल्ड हॉर्सेस की संज्ञा दी गई है, लेकिन ये ओल्ड हॉर्सेस हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, मौजूदा चैंपियन भी हैं, और इस समय भी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं ये और निखार आता जा रहा है।
नहीं बिल्कुल, देखिए उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि उनको जब बूढ़े खिलाड़ियों की टीम का आ गया तो उन्होंने दिखाया कि बूढ़े शेर हैं वो
जी,
तो वो उन्होंने खिताब जीते तब, और अब देखिए उनके खिलाड़ी लगातार अपने देश में चले गए, मुस्तफिजुर जो है बांग्लादेश चले गए, दूसरे खिलाड़ी चले गए, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। ये एक बड़ी बात है उस टीम के साथ, और महेंद्र सिंह धोनी जैसा अनुभवी खिलाड़ी उनके पास है और उसका फायदा इतने सालों से उनको मिल रहा है जब पहली आईपीएल से, तो मुझे लगता है कि इस मैच को जीतकर वो चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं कि प्लेऑफ कहीं निकल ना जाए हाथ से।
राकेश, पॉइंट टेबल इस समय मेरे सामने है, केकेआर पहले नंबर पे है, राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पे है, एसआरएच जो है सनराइजर्स हैदराबाद वो तीसरे नंबर पे है। केकेआर, राजस्थान रॉयल्स और बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्होंने, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन।
देखिए केकेआर का प्रदर्शन अच्छा, राजस्थान रॉयल्स जो है पहली आईपीएल 2008 में हुई थी तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर मुंबई के जो डीवाई पाटिल स्टेडियम में वहां वो चैंपियन बने थे, और क्या युवा खिलाड़ी थे उनके पास,
लेकिन वो उस समय टीम इतनी परिपक्व भी नहीं थी,
कप्तान शेन वॉन थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी चीज थी कि शेन वॉन उनके पास कप्तान के रूप में थे, जो कि खिलाड़ियों को उन्होंने, युवा खिलाड़ियों को जिनके नाम ऐसे नहीं थे उनको साधा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं वहां पर आईपीएल में गया था, पूरी कवर की मैंने, तो शेन वॉन से पूछा गया था कि भाई आप कैसे इन खिलाड़ियों को साधते हो, क्योंकि शेन वॉन की अंग्रेजी उस समय इस तरह की होती थी कि आम हिंदुस्तानी के लिए समझना उतना आसान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मैं टीम मीटिंग्स में उतनी स्पीड से इंग्लिश नहीं बोलता हूं, और मैंने दो तीन लोग तैयार कर दिए हैं, जो भी मैं अंग्रेजी में बोलता हूं वो इन खिलाड़ियों को पास ऑन कर देते हैं, और ग्राउंड में जब मैं लीड करता हूं तो मैं हाथों के इशारे से करता हूं, कुछ इशारे हमने बनाए हैं स्पेशल जिससे कि विपक्षी टीम को ना पता चल सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो क्रिकेट के ट्रेडिशनल इशारे थे वो वाले इशारे नहीं, बोला मैंने अलग से बनाए हैं। तो काफी मेहनत देखिए आईपीएल के अंदर की जाती है। केकेआर ने जीता, आप देखिए कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस समय तीसरे स्थान पर चल रही है, वो आखिरी स्थान पर रहे थे 2008 में, और 2009 में तब ये डेक्कन चार्जर्स की टीम साउथ अफ्रीका में आईपीएल गई थी, यही चुनाव के दिन थे तो सुरक्षा ना दिए जाने की बात हुई थी तो आईपीएल को वहां शिफ्ट कर दिया था दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर जो है डेक्कन चार्जर्स की टीम चैंपियन बनी थी। तो इसका बड़ा जबरदस्त, बहुत मेहनत है आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों की, मैदान के अंदर और पर्दे के पीछे के जो खिलाड़ी हैं, सपोर्ट स्टाफ, जिस तरह के सोच विचार, टीम मैनेजमेंट का इतना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आप समझिए कि गुस्सा भी खा जाते हैं, जो मालिकान लोग हैं खिलाड़ियों के ऊपर बरसते भी हैं, सब कुछ इसमें देखने को मिलता है।
और शायद ये अब बहुत तेजी से बाहर निकलता हुआ भी आ रहा है, शायद आपका इशारा केएल राहुल की तरफ भी है, जिस तरह से उनको इसका खामियाजा भुगतना
पड़ा। देखिए केएल राहुल को आप देखेंगे तो एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं शुरू से, तो कई बार ऐसे खिलाड़ी के साथ हो जाता है कि जो आपके टीम के मालिक हैं, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं और जब टीम हारती है और उसमें लगता है उनको कि कप्तान का फैसला कुछ गलत हो गया, ठीक है, अगर आप क्रिकेट में गलती नहीं करेंगे तो कोई बल्लेबाज आउट ही नहीं हो सकता
जी,
है ना, और फील्डर गलती ना करे तो कोई कैच ना छूटे, गेंदबाज गलती ना करे तो हर गेंद पे आपको विकेट मिले।
पर राकेश, क्या पर्दे की जो पीछे की चीजें हैं वो इस तरह से सामने आती है तो मनोबल तो गिरेगा ही खिलाड़ियों का।
देखिए उनका ही नहीं, सबका गिरता है, हमने तमाम तमें बिल्कुल उनके जो समर्थक होते हैं उनका भी गिरता है, उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। लेकिन ये क्या है कि प्रोफेशनल क्रिकेट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा है कि कप्तान अपने खिलाड़ियों को डांटते हैं लेकिन फिर गले भी लगाते हैं, तो ऐसे ही ये टीम के ओनर भी हैं, कई बार गुस्सा खाते हैं लेकिन वो खिलाड़ियों को प्यार भी पूरा करते हैं।
इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए नए मुख्य कोच के लिए आवेदन आमंत्रित करने का, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं। नवंबर 2021 में पदभार संभालने के बाद द्रविड़ को पिछले नवंबर में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की जो हार हुई थी उसके बाद दो साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद टी20 विश्व कप तक कोच बने रहने को कहा था। लेकिन अब फिर जय शाह का जो टिप्पणी आ रही है, जो बात निकल कर रहे हो कहने की, अगर द्रविड़ बनना चाहते हैं तो दोबारा आवेदन कर सकते हैं, क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अभी भी विश्वास जताता है उन पर?
देखिए बिल्कुल एक प्रक्रिया है, एक अच्छी चीज है कि जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई उन्होंने, वो तय करती है, वो कोच के लिए इंटरव्यू लेती है, उसके तमाम चीजें वहां पर हैं। और राहुल द्रविड़ जैसे इतने सालों से अब कोचिंग में हैं, पहले उन्होंने जूनियर टीमों को किया, उसके बाद ये सीनियर टीम के कोच बने, तो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन क्या है कि यहां जीतना चाहते हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाला कोच वो सब चाहते हैं, चाहे वो अंडर 19 लेवल पे हो चाहे वो सीनियर लेवल पे हो। और राहुल द्रविड़ तो टी20 के खिलाड़ी ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखिए उनको टी20 के वर्ल्ड कप कमान सौंपी गई है और युवा खिलाड़ियों को अच्छे ढंग से वो मैनेज भी कर रहे हैं। देखिए कोच के लिए क्या होता है कि मैन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोच विराट कोहली को बहुत कुछ नहीं सिखा सकता या रोहित शर्मा को नहीं सिखा सकता, लेकिन कई बार क्या होता है कि सीनियर खिलाड़ी का जो समर्थन होता है या कुछ बातें ऐसी, राहुल द्रविड़ ने इतनी क्रिकेट खेली है और इतनी जीवटता के साथ खेली है, कितने जुझारू खिलाड़ी वो रहे हम उस चीज को जानते हैं, कैसे उन्होंने नाम अपना कमाया है कि खाली टेस्ट क्रिकेटर माने जाते थे, फिर वनडे के अंदर और वर्ल्ड कप के अंदर हाईएस्ट स्कोरर भी वो बने हैं, तो उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो अपने अंदर बदलाव भी लाते हैं। तो एक प्रक्रिया है, अगर वो चाहेंगे दोबारा इस पद को संभालना तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि एक सिस्टम के तहत कोच की नियुक्ति का जो बीसीसीआई करता है।
क्रिकेट की ही खबर को आगे लेते हैं। न्यूजीलैंड बैटर कॉलिन मुंड्रो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, हालांकि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ खेलते रहेंगे, मुंड्रो का डिसीजन है। और कहां तक इनको लगता है आपको कि सही?
देखिए वो काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल भी नहीं रहे थे, मुझे लगता है कि 3-4 साल उनको हो गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर थे, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि जब आदमी सोचता है कि अब कोई चांस है नहीं तो चलो रिटायरमेंट ले लो ताकि आप फ्री हो जाते हैं बाकी दूसरी चीजें करने के लिए।
बात अब निशानेबाजी की। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजों के ओलंपिक चयन प्रतियोगिता में कल से भोपाल में शुरू हो रही है और इस चयन प्रतियोगिता में कुल 37 पिस्टल और राइफल निशानेबाज भाग लेंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए चयन प्रक्रिया अब लगातार शुरू हो रही है। निशानेबाजी में कहां तक आपको लगता है हमारा स्कोप ज्यादा है?
देखिए स्कोप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले दो ओलंपिक से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और हमारे जो बड़े नामी निशानेबाज होते हैं वो शुरुआत में जब चूक जाते हैं शुरुआती दिनों में चैंपियनशिप के, तो मेरी कई खिलाड़ियों से बात हुई जितने निशानेबाज, उन्होंने कहा कि जब सितारे खिलाड़ी हमारे चूकते हैं तो बाकी जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी दबाव में आ जाते हैं। और निशानेबाजी के अंदर एकाग्रता का और दबाव का बड़ा महत्व रहता है। लेकिन ये एक अच्छी चीज नेशनल राइफल एसोसिएशन ने की है कि भाई जिसने कोटा जीता उसकी जगह पक्की नहीं है, ये ट्रायल होगा आपका, और मेरे ख्याल से 3-3 के करीब खिलाड़ी हैं वो मुकाबले में रहेंगे, तो उसमें से जो भी जीतेगा वो उसमें जा सकता है।
राकेश, किन खिलाड़ियों पर हमें अपनी नजर रखनी चाहिए?
देखिए अब इसमें पता चलेगा कि कितने खिलाड़ी इस चैंपियनशिप से आगे बढ़ पाते हैं, और हो सकता है जो चूक जाए उनमें से भी किसी को रख लिया जाए, क्योंकि कई तरह के क्राइटेरिया निकाल देता है फेडरेशन। लेकिन अभी तो उन्होंने ये रखा है कि भाई इसमें जो जीतेगा, जो कोटा प्लेस हमारे पास आए हैं लगभग 16 के करीब हैं, तो उसमें जो इसमें चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे करंट फॉर्म में उसको दिया जाएगा।
बहुत संक्षेप में हमारी मुख्य चुनौती किस देश के साथ रहेगी खिलाड़ियों?
देखिए चुनौती क्या है कि तमाम सभी देश ऐसे हैं जो भी ओलंपिक में खेलते हैं आपको उसको बराबर का कंटेंडर मानना पड़ता है। बहुत से खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश का एक ऐसा निशानेबाज था के जिसने अभिनव बिंद्रा को हरा दिया था और 0.05 का जो अंक का अंतर था उनका, लेकिन वो विदेशों में ट्रेनिंग लेते थे, बांग्लादेश के जरूर थे लेकिन विदेशों में ट्रेनिंग लेते थे।
वक्त बहुत कम है, चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें, ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थियम ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि वो सीजन के अंत में संन्यास ले लेंगे। राकेश, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे नवीन को दें इजाजत, नमस्कार।